This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. There has been a sudden overnight spike of coronavirus cases in South Korea, 18, and 2,100 nightclubs and other nighttime leisure spots have been ordered to shut down. Most of the new infections have been traced to clubgoers in Seoul. South Korea has now reported 10,840 COVID-19 cases and 256 deaths. Social distancing in the country was eased when the number of new cases was less than 10 for five consecutive days. That ended this week. In Germany, there have been new virus outbreaks at three animal slaughterhouses, two in the west of the country, another in the north. Local officials are charged with working to contain the surges, part of a plan for Germany to gradually ease pandemic restrictions. Germany has lost 7,500 lives to the virus. Pakistan today is allowing shops, factories, construction sites, and other businesses to reopen, despite a daily upswing in COVID-19 cases, 1,600, bringing the total to about 27,500 with 618 fatalities. Pakistani Prime Minister Imran Khan says the government cannot support millions of families that depend on daily wages. But he warns if the public fails to observe existing social distancing guidelines, strict controls will be put back in place. These new case figures in South Korea, Germany, and Pakistan clearly demonstrate the risks of lifting pandemic restrictions. In Italy, this is the first weekend people have been allowed out for more than just work and necessities. And in Rome, the Campo dei Fiori flower and vegetable market has attracted large crowds of shoppers. The other side of the coin, the government says it may take legal action to stop the northern province of Bolzano from reopening stores this weekend, in defiance of a national plan to wait until later this month. Italy traces more than 30,000 deaths to COVID-19. In Spain, health authorities will allow the reopening of regions where hospitals have demonstrated their readiness to handle a potential second wave of infections. This is VOA News. Globally, the coronavirus pandemic has sickened 3.9 million people and killed more than 275,000. The numbers come from a Johns Hopkins University running tally. China is going ahead with more school reopenings in Beijing. Upwards of 84,000 junior high school students and some 13,000 teachers are due back in the classroom on Monday. 50,000 high school students return to classes on April 27th. And China's ceremonial legislature is scheduled to hold its annual session on May 22nd, after a March meeting was postponed because of the pandemic, which China appears to have stifled within its borders. British Prime Minister Boris Johnson delivers a nationwide address tomorrow and is expected to talk about how and when the UK will be able to ease its lockdown. The country's environment minister says there will be no dramatic overnight change, that the government, in his words, will be very, very cautious. Britain is second only to the United States in the number of lives lost to the pandemic, more than 31,000. Kuwait has just declared a lockdown, which is scheduled to be in place until the end of May. Kuwait has suffered 7,200 coronavirus cases, with a death count so far under 50. Here in the U.S., dozens of states are modifying or removing pandemic restrictions. This despite rising death tolls in many areas of the country and without a grand strategy for how to move ahead. The Associated Press is reporting that proposed reopening guidelines from the Centers for Disease Control was put on the shelf by the White House. The advisory was put together by President Donald Trump's Coronavirus Task Force and is designed to help business owners, faith leaders, educators, and state and local officials carry out reopening plans with safety as a key. The AP says only after an early report this week did the Trump administration order that parts of the CDC document be fast-tracked for approval. When it comes to jump-starting the American economy, there is increasing pressure from stark unemployment numbers. Joblessness in the United States has reached Great Depression levels. April saw 20.5 million people lose work, and unemployment reached 14.7%. There is a widespread belief the actual figures may be much higher. There is political pressure on President Trump's reelection campaign, given that his strongest argument for next November, until a few months ago, was a booming economy. The counterweight to moves on reopening states, the dramatic pandemic figures. There have been close to 1.3 million COVID-19 cases in the U.S., with more than 77,000 lives. Among those who have tested positive for COVID-19, a personal White House valet to President Trump and Vice President Mike Pence's press secretary. 75-year-old Roy Horn, half of the entertainment team of Siegfried and Roy, has died of virus complications in Las Vegas, where magic shows by the two men were the stuff of legend for the millions who came to see them perform. More news at voanews.com online. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में वाशिंगटन से खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ असद हसन। आज के प्रोग्राम में बात होगी कोरोना के सबब पाकिस्तान की बरामदात में कमी, यूरोप में कसाद बाजारी, ईरान में मुआशी मुश्किलात। तजिया लेंगे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? स्वीडन और दुनिया के दीगर ममालिक कोरोना के खिलाफ इसको हथियार क्यों समझते हैं? ईरान के 15 सूबों में कोरोना की दूसरी लहर, बात करेंगे डॉक्टर सुहेल चीमा से। क्रिकेट मैदानों पर ना सही लेकिन वेबसाइट्स और सोचों में ज़रूर मौजूद है। कोरोना के सबब गेंद और बल्ले से दूर खिलाड़ियों के स्किल्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्रिकेट के मैदानों में वीरानी क्रिकेट बोर्ड्स के लिए कितने बड़े माली नुकसान का सबब बन रही है? गुफ्तगू करेंगे मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर्स हसन जलील और शाह फैसल से। आखिरी सेगमेंट वबा में कला, न्यूयॉर्क में जिंदगी की रौनकें यकदम मांद पड़ते देखकर शायर अवैस राजा क्या लिखते हैं? तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और बात करते हैं पाकिस्तान की बरामदात में कमी और यूरोप में कसाद बाजारी पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारा ये खसूसी प्रोग्राम, बात हम करेंगे कोरोना के मुआशी असरात के ऊपर और दो डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम एनालिसिस लेंगे। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज़ तजियाकार मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ वस्तगी वाशिंगटन बेस्ड हैं और ना सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया की मीशत और बिलखसूस पाकिस्तान अमरीका की मीशत पर तो खास तौर पर उनकी नज़र रहती है। डॉक्टर साहब, दो डेवलपमेंट्स हैं, एक तो ये कि कोरोना के सबब बताया ये जा रहा है कि अप्रैल में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें 54% उसमें कमी आई है, अदाफ का जो हसूल है वो मुश्किल होता जा रहा है, बड़ी ये कमी है और इक्तसादी माहरीन वहाँ पर बता ये रहे हैं कि अगर आइंदा चंद महीनों के दौरान पाकिस्तानी बरामदात में ये मनफी रुझान जारी रहता है तो इस साल के लिए जो अदाफ मुकर्रर किए गए थे 26 अरब डॉलर के वो नामुमकिन हो जाएंगे या इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे, ये थोड़ा सा अंडरस्टूड भी है इस एतबार से। दूसरी खबर जो है वो है उससे यूरोप से हमारे सामने आ रही है और यूरोपीय यूनियन ने बताया है कि 27 मुल्कों के इस ग्रुप में ग्रुप को इस साल कोरोना की सबब सख्त नौयत की कसाद बाजारी का सामना है और ये रिपोर्ट में बताया ये गया है कि ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वाइन ली ने और उनका बताना ये था कि यूरोप की मईशत से मुतालिक की तवक्को ये की जा रही है कि 2021 में 6% बहाली से पहले 2020 में यूरोपीय मईशत 7.5% जो है वो मजीद सुकड़ जाएगी। सो इसके साथ बाजारी पे और पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिक्लाइन बरामदात का इस पे बताइएगा कि ये किस वजह से जाहिर है कि जो कि फैक्ट्रीज बंद हैं, प्रोडक्शन नहीं है, सो नेचुरली वो नहीं हो रहा है या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑफकोर्स इम्पोर्ट्स उसके ऊपर भी कदगने लगा दी होगी कि पता नहीं क्या मटेरियल कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं।
देखिए, पहला सवाल तो जो है ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के मुतालिक, वो तो एक्सपेक्टेड था। याद रहे कि अप्रैल वो पहला महीना था जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में खास कमी आई, उससे पहले इतनी सिग्निफिकेंट कमी नहीं आई थी। इनफैक्ट जो मार्च का महीना था उसकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो मार्च 2019 के एक्सपोर्ट के मुकाबले में थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन ज्यादा कम नहीं हुई थी। उस वक्त तक ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसके हालात खराब हो चुके थे और उसके साथ साथ कंजम्पशन और डिमांड बाकी मुल्कों में गिर गई थी, जिसकी वजह से नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में बुरा असर आएगा, जैसे कि बाकी लोगों की बाकी मुल्कों की एक्सपोर्ट में भी आया है। इस वक्त तो तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी एक्सपोर्ट गिरी है क्योंकि तमाम के तमाम दुनिया की जो कंजम्पशन है वो गिर गई है, जिसकी गिरी है तो उसके साथ साथ इम्पोर्ट भी गिरी है और उसकी वजह से तमाम मुल्कों की एक्सपोर्ट गिरी है, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब असल बात ये फरमा रहे थे दोस्त है कि अगर इसी स्पीड पर गिरती रही जैसे कि अप्रैल में हुआ है तो फिर ये एक बड़ा सीरियस मामला बन जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो असरात होते हैं टिपिकली इस किस्म के वो थोड़े से स्टैगर्ड होते हैं, उसमें कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो वक्त के साथ आता है। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान का अगला जो तीन महीने हैं, जो आखिरी तीन महीने हैं इस फिस्कल ईयर के, उससे मुश्किल होंगी और एक्सपोर्ट्स और गिरेंगी, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की इम्पोर्ट है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली गिर रही है। इसलिए सरप्राइजिंगली आप ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कि पाकिस्तान की जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव हुआ है, वो इम्प्रूव हुआ है अभी तक तो. लेकिन क्या इस किस्म की इम्प्रूवमेंट कायम रहेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है. लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके साथ साथ इम्पोर्ट ज्यादा गिरती है और एक्सपोर्ट ज्यादा कम गिरती है, जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है थोड़ी देर के लिए टेम्पररी. यही पाकिस्तान में हुआ है, बाकी ममालिक ऐसा हुआ.
लेकिन इसमें एक और बात भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, सो उसकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे चावल है या दीगर कुछ शायद खुर्दनोश हैं, उसकी बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई है, वहाँ पे ज़ाहिर प्रोडक्शन भी कम हुई है और ऑफकोर्स जो है वो एक्सपोर्ट वो भी कम हुई है. सो ये भी थोड़ा यानी कहना चाहिए कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेंगी चीज़ें.
हमेशा करती है. ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होती हैं खासतौर पर कॉटन जैसी चीजें, इसमें निकवेयर शामिल हो जाता है, गारमेंट शामिल हो जाते हैं, थ्रेड वगैरह शामिल हो जाता है, क्लॉथ शामिल हो जाता है, तो उनमें यकीनन कमी आएगी क्योंकि दुनिया में डिमांड जो है वो कम हो गई. वो तो ठीक है, लेकिन आपका कहना यह भी दुरुस्त है कि चूंकि दुनिया में जहां तक खाने की जरूरत है और खाने की डिमांड का मामला है वो इतनी जल्दी कम नहीं होता, तो इसकी एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो चावल और गंदम और दूसरी चीजों की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी नहीं गिरेगी जितने की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में गिर रही है. ये भी दुरुस्त है, देखिए ये इतनी इसको इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना लगाइए. उसकी वजह यह है कि तमाम मुल्कों ने ये एक ट्रेडिशनल बन गई थी, खासतौर पर गल्फ के इलाके में जहां हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोजर आदत जाती है कि वहां पर उन्होंने अपने स्टॉक्स बनाने शुरू कर दिए. और वो इस वक्त जबकि कंडीशन खराब हो गई है और तमाम दुनिया की कीमतें वो गिर गई हैं, तो हो सकता है कि वो अपना स्टॉक भी इस्तेमाल करें और रीस्टॉकिंग भी करें. अगर वो रीस्टॉकिंग करते हैं तो फिर उनको ज्यादा इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ती है. लेकिन कहाँ तक होगा और कैसे होगा ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मामले को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो इसके 2 महीनों का जो पीरियड होता है इतना कम होता है कि आप कोई फर्म असेसमेंट नहीं कर सकते. लेकिन ये जरूर है जैसे आपने फरमाया कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम गिरेगी, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट ज्यादा गिरेगी, खासतौर पर कॉटन की एक्सपोर्ट ज्यादा गिरेगी. क्या होगा ये 1-2 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही महसूस होगा कि क्या हो सकता है. लेकिन ये मैं कहता चलूं कि ये जो कहते हैं इस कॉइन के दो हिस्से हैं, दो साइड हैं. एक साइड पे तो इम्पोर्ट गिर रही है, एक्सपोर्ट गिर रही है, लेकिन इम्पोर्ट भी गिर रही है और खासतौर पर बड़ी तेजी से गिर रही है, जिसकी वजह से टेम्पोरेरली आपका ट्रेड बैलेंस बेहतर हो जाए लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा.
ठीक, अब डॉक्टर साहब आते हैं यूरोप की कसाद बाजारी की जानिब. हमें हमारे लोगों को ये भी बता दें कि कसाद बाजारी क्या है और 27 ममालिक जो हैं वो इस रेफरेंस में वहाँ पे पूरी यूनियन वो स्ट्रगल कर रही है और कोरोना ने बुरी तरह से उसको मुतासर किया है और ये जो मुआशी चैलेंजेस या बदहाली की जो पेश गोइयाँ हैं ये कहाँ लीड करेंगे पूरी यूरोप की इकोनॉमी को.
देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल जहां तक हमें मालूम है यूरोपियन यूनियन की जो प्रोडक्शन है यानी कि उनकी जो नेशनल इनकम है वो कोई 7.5% गिरेगी. याद रहे कि उसकी इम्प्लीकेशन हर तरफ की होंगी, ये भी देखना जरूरी है कि अमेरिका यूरोप और चीन और जापान को मिलाकर ये ममालिक जो है ये दुनिया की 75-80% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो करते हैं. अगर इनमें गिरती अगर ये गिरते हैं तो उसकी वजह से इनके असरात दूसरे ममालिक पर बहुत ज्यादा होंगे और जो आप सामने नजर आने शुरू हो गए. जहां तक यूरोप का ताल्लुक है याद रहे कि यूरोप में उनको इम्पोर्ट की बहुत जरूरत रहती
है,
उसके साथ साथ वही इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, इनके असरात ज्यादा होते हैं. अब मुश्किल आ जाती है कि आया ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा और कितनी जल्दी होगा. जहां तक मुझे मालूम है तो यूरोपियन यूनियन हमारे ये कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2021 में उनकी प्रोडक्शन कुछ 6% बढ़ जाएगी बनिस्बत 2020 की. ना ये प्रोडक्शन जो है ये बड़ी खतरनाक किस्म की प्रोडक्शन है, क्योंकि इसकी जो बेसिक फाउंडेशन होती हैं उनमें मुश्किलात होती हैं. एक तो बात यह है कि अगर ये 6% बढ़ भी जाए उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन की जो अपनी इनकम होगी वो 2019 के मुकाबले में अभी भी नेगेटिव होगी.
सही सही.
लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूँ जहां तक उसकी یورپ کی انٹیگریشن دوسرے ممالک کے ساتھ ہے اور ریجنل انٹر ریجنل انٹیگریشن ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ لیگ بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں وقت لگتا ہے. ابھی تو کنٹریکشن ہو رہی ہے, اس کے اگر تھوڑی سی ایکسپینشن شروع ہوئی تو اس کے لیے کریڈٹ چاہیے ہوگا, اس کے لیے کیپیٹل چاہیے ہوگا, لیبر کو دوبارہ واپس آنا ہوگا, ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز ہوتے ہیں, بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں دوبارہ پروڈکشن کو اسٹارٹ کرنے میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ 2021 میں ان کی پروڈکشن جو ہے یا ان کی انکم جو ہے وہ 3-3.5% زیادہ پرسنٹ زیادہ نہیں ہو.
یعنی ایک سٹرگل ہے جو ہمیں پورا نہ صرف ملک بلکہ پورے بر اعظم اور پوری دنیا کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اب ذرا ایک ہیومنٹیرین اینگل ہے, ویسے تو اسٹریٹجک زاویہ بھی ہے کرونا کا. ایران دنیا سے آئسولیٹ ہے, بڑی پابندیاں ہیں اس کے اوپر امریکہ خاص طور پہ, لیکن یورپ کے ساتھ اس کی انٹیگریشن یا بزنسز اسٹل ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایران سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کے 15 صوبوں کے اندر کرونا وائرس جو ہے مزید شدت کے ساتھ واپس آیا ہے اور 15 اس کے صوبے وہاں لپیٹ میں ہیں. وہاں پہ ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کے لیے جو ایک ڈیٹ رکھی گئی تھی اس سے کم از کم 3 ہفتے پہلے اس کو کھول لیا گیا, کیونکہ معاشی دباؤ ہیں, زیادہ دیر اس کو وہ لاک ڈاؤن نہیں رکھ سکے ہیں. سو اب وہاں پہ نئی وبا آ گئی, تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی بالخصوص امریکہ وہ کیا اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟
نظر ثانی کرنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ تمام ممالک اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے, مشکلات بہت زیادہ ہیں. ان کی اپنی انٹرنل پرابلمز ایسی ہیں کہ وہ ایکسٹرنل ایشوز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کر رہے جتنا کہ ان کو کرنا چاہیے یا وہ کریں گے کچھ 6-5 مہینوں کے بعد. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ہم سب, آپ کو بھی معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں کی جو پرابلم ہوئی وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کو بیسک قسم کی جو دوائیوں کی ضرورت تھی یا دوسری جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں سرجیکل اور دوسرے انسٹرومینٹ اور پروٹیکشن کے لیے جو پی پی ای کی جو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو نہیں مل رہا. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی انفارمنس بہت کم تھی, بڑی لمیٹڈ تھی, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہوگا. تو کوشچن صرف یہ تھا کہ کتنی جلدی ہوگا اور کتنا سیریس ہوگا. اگر انہیں 25-20 پروونسز میں یا جو ان کے ضلع ہیں ان کے اندر اگر وہ ان کو کنٹین کر دیتے ہیں تو پھر مشکلات اتنی سیریس نہیں ملتی. جہاں تک انٹرنیشنل سپورٹ کا معاملہ ہے, دیکھیے تمام ممالک کو اس وقت بڑی چیلنجز, ایک چین ہے تھوڑی سی لمیٹڈ اماؤنٹ میں, جاپان ہے اور کچھ اور یورپ کا ممالک ہے, خاص طور پہ جرمنی جو لے کر نکلے تجارت لے کر ڈیلیز بہت آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ گلوبل سوسائٹی جو ہے اس وقت ایران کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں ان کو ویکن کر دیں گے. یہ ایک ویک قسم کے,
اچھا اگر سینکشنز نہ بھی لفٹ ہوں یا نہ ایز ہوں تو یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر امداد مل سکتی ہے ایران کو؟
اگر ہو تو ملے نا. دیکھیں جیسے عرض کر رہا تھا کہ بیسک پرابلم اویلیبلٹی کی ہے اور ڈومیسٹک نیڈ کی ہے. پہلے آپ ڈومیسٹک نیڈ کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد آپ آگے باہر دیکھتے ہیں. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ ابھی یورپین یونین نے دوسرے ملکوں کو ملا کر ایک نیا کانٹریکٹ اگریمنٹ کیا تھا, اس کی بیسس پر وہ ریسورسز باقی ملکوں کو پرووائڈ کریں گے تاکہ وہاں پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے, لیکن اس کو انفورس کرنے میں وقت لگتا ہے.
لیکن جیسے نا آئی ایم ایف نے, ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ پیکیجز دیے پاکستان کو, پاکستان جیسے ملکوں کو, بعض ملکوں نے باقی ملکوں کے قرضے ری اسکیڈول کیے, سو اس ٹائپ کی کوئی کمپنسیشن؟
دیکھیے ایران مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے, وہ $5 million مانگ رہا ہے. اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یقیناً امریکہ جیسے ممالک جو ہے اس کو اپوز کرتے ہیں.
$5 million or $5 billion?
جی, تو وہ اب یقیناً اس کے لیے ایران کو ایک 85% سپورٹ کی ضرورت ہے بورڈ میں. اب امریکہ اس کو ویٹو تو نہیں کر سکتا اور نہ وہ کرے گا ایسا زائن ہو, لیکن وہ ووٹ نہیں کرے گا ان کے سپورٹ میں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, نمبر ون. نمبر دو یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بڑا کنسیشنل قسم کی اسسٹنس ہوتا ہے, لیکن اس اسسٹنس کے لیے آپ کو ایک پالیسی پلان دینا ضروری ہوتی ہے, اس کی بیسس پر آپ انفورس کریں گے. ابھی تک ایران کو آفر نہیں کی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کے اندر اپنا کانفلکٹ پایا جاتا ہے اور کچھ ایسے گروپس ہیں جن میں کہ ریولیوشنری گارڈ شامل ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ ایران اس قسم کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی پالیسی پلان کو بنانا اور پھر اس کو شیئر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ان کے اسٹیپ کیا ہیں, کہ ان کی پرابلمس کتنی سیریس ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو حل کریں گے, کیونکہ ان کو فکر رہتا ہے کہ یہ انفارمیشن اگر غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پاکستان کی معیشت اور یورپ کی معیشت اور پھر ایران کے چیلنجز اس پہ آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. کرونا کی عالمی وبا کے دنوں میں ہمارا یہ خصوصی پروگرام, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کرونا سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں پہ. ایک طرف تو ویکسین بنانے کے دعوے ہو رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز آج یہ بتا رہا ہے کہ نیو یارک کے اندر ایک پہلے مریض کو باقاعدہ یہ ویکسین لگا دی جائے گی. وہ کتنی سازگار رہتی ہے, اس سے کیا نتائج آتے ہیں, یہ ہمیں وقت بتائے گا. یا ہمارے ساتھ ہمارے جو موجود گیسٹ ہیں, بار بار ہم ان کو ان دنوں میں زحمت دے رہے ہیں, ڈاکٹر سہیل چیما صاحب, نیو یارک بیسڈ ڈاکٹر ہیں, پریکٹیشنر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اس پہ جو ریسرچز آ رہی ہوتی ہیں ان کو نہ صرف ایلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ اپنا اس میں انالیسز بھی دیتے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. وائس آف امریکہ کے پروگرام میں ہم آپ کو بہت تواتر سے زحمت دے رہے ہیں.
بہت شکریہ اسد.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے ایک میں کہوں گا بلاگ کہوں, ڈیٹیل اسٹیٹس کہوں, آپ نے اس میں ایک حوالہ دیا ہے کہ سویڈن کے اندر ہرڈ امیونٹی جو ہے اس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے, اور اس کو وہ اپلائی کرتے ہوئے کرونا سے ڈیل کرنے کی ایک اچھی بہترین حکمت عملی کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتائیے کہ یہ ہرڈ امیونٹی کیا ہے اور کرونا میں کیسے مددگار ہو سکتی ہے زندگی کو واپس لانے کے لیے.
دیکھیں ہرڈ امیونٹی جو ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر جیسے کرونا کے وائرس, کرونا وائرس کے بارے میں جو ہرڈ امیونٹی کا نمبر ہے وہ 70% لوگوں کو کے اندر اگر اینٹی باڈیز ہوں گی تو پھر یہ وائرس جو ہے مزید نہیں پھیل سکے گا, مطلب اس کے بعد یہ وائرس کی جو پینڈیمک ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس سے پہلے جیسے میزلز تھا, وہ میزلز کی ہرڈ امیونٹی کے لیے 90% لوگوں کو اس کے اندر اینٹی باڈیز ہونا ضروری ہے تو میزلز نہیں پھیلتا اس کے بعد. تو اس کا جو انفیکشنز ریٹ تھا میزلز کا کرونا وائرس سے بھی زیادہ ہے, لیکن کیونکہ میزلز کی ویکسین بن گئی, ہر بچے کو ایم ایم آر, میزلز, ممس اور روبیلا کی ویکسین لگتی ہے, تو اسی وجہ سے اس کا پینڈیمک جو ہے وہ نہیں بنا اور وہ اس کو ہم نے کنٹین کر دیا. اس کو میں آسان لفظوں میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ ایک کمرے کے اندر اگر 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کے اندر اگر 70-70 پیپل would need to have antibodies. ٹھیک ہے, اب وہ اینٹی باڈیز کس طرح آئیں گے؟ اینٹی باڈیز دو طریقے سے آتی ہیں. ایک تو اینٹی باڈیز جیسے کہ ہم ویکسین دیتے ہیں کسی پیشنٹس کو, جیسے بچپن میں ہم سب کو ہر طرح کی ویکسین ہمیں لگی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ ساری بیماریوں سے, ہم نے جو پہلے 100 سال پہلے, 50 سال پہلے, 200 سال پہلے بیماریاں ہوتی تھی جیسے چکن پاکس ہو گئی, اسمال پاکس ہو گئی, پولیو کی ویکسین دی جاتی ہے, اس طرح کامن ڈیزیز ہوتی ہیں جس کی ویکسین ہمیں تیار کی تو وہ بیماریاں ہم نے دنیا سے ختم کر دی آلموسٹ. تو کرونا وائرس کے لیے ہمیں اگر ایک کمرے میں 100 لوگ ہیں, 100 میں سے 70 لوگوں کے اندر اینٹی باڈیز اگر ڈیولپ کر دیں تو ان کو یہ کرونا وائرس کا اسپریڈ ختم ہو جائے گا. اب وہ اینٹی باڈیز دو طریقے سے پیدا ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ لوگوں کو انفیکشن آلریڈی جب ہو جاتا ہے کرونا وائرس کا تو آپ کا جسم اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈی تیار کر دیتا ہے آپ کے,
صحیح,
یعنی کہ فیوچر میں پھر آپ کو اس وائرس کا انفیکشن ہونے کے چانسز آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ طریقہ ہے جو کہ نیچرل طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ویکسین ہو, جیسے کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی بہت باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری کمپنیز, یعنی کہ 35 کمپنیز ہیو بین ورکنگ آن اٹ ٹو ڈیولپ دا ویکسین, اور چانسز ہے کہ نیکسٹ ایئر ارلی یا مڈ تک اس کی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی.
صحیح.
اب دوسرا طریقہ ظاہر سی بات ہے ایک سال ہم نے گزارنا ہے. جیسے سویڈن کے آپ نے ریفرنس دیا, جیسا کہ میں نے کل اپنی بلاگ بھی لکھا تھا, تو انہوں نے یہ نیا ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہم لوگ لاک ڈاؤن جو ہے زیادہ عرصے تک ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہمیں جو ہے نیچرلی جو ہرڈ امیونٹی ہے, یعنی کہ ہم اس کو لوگوں کو باہر نکالتے ہیں اور جو سسپٹیبل یعنی کہ ایلڈرلی جو پاپولیشن ہے یا امیونو کمپرومائز یعنی کہ وہ لوگ جن کی کوئی سیویئر قسم کی ڈیزیز بیماریاں ہیں جو کہ کرونا وائرس ان لوگوں کو سیویئرلی افیکٹ کرتا ہے, ان کو ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, ینگر پاپولیشن کو باہر نکالیں, اور اگر ان کو انفیکشن ہو بھی جاتا ہے تو وہ دے آر سو ہیلتھی انف دیٹ دے ول فائٹ اٹ آؤٹ. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں مرا, وہاں پہ بھی اوور 1500 پیپل ہیو بین ڈائیڈ سو فار ود دی کرونا وائرس, بٹ دیئر پرسپیکٹو اور دیئر نیریٹو کہ بھائی دیکھیں ڈیتھ تو ویسے بھی ہوں گی اگر ہم لوگوں کو جیسے امریکہ میں لاک ڈاؤن ہے کیا ڈیتھ نہیں ہو رہی, یہاں پہ دے آر اوور 70,000 پیپل ہیو بین ڈائیڈ ود دی کرونا وائرس ان یو ایس ایٹ دس مومنٹ. لیکن کیا ہے کہ اکانومی کا جو بہت بڑا جو میں تو اس کو اکانومی کا وائرس کے نام سے ہی کہتا ہوں کہ جو وہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا فیوچر میں بھی اور ایٹ دا مومنٹ بھی, کیونکہ سو فار 30 million پیپل ہیو لاسٹ دیئر جابس ایٹ دا مومنٹ. اب یہ آنے والے دنوں میں مزید یہ نمبر بڑھتے ہی چلے جائیں گے.
بہت ساری آپ کے ہم پوسٹ میں دیکھتے ہیں بہت ساری ایشوز پہ کے ریفرنس میں بتائیے, وہاں پہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ اینٹی باڈیز جو ہے اس کی اپروول ملنی چاہیے اور انہوں نے وہ ماڈل شو کیے ہیں وہاں پہ, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہ پرمیشن دے دی جانی چاہیے؟ وہاں پہ تو ویسے بھی میجورٹی جو ہے ان کی عمریں 35 years سے 35 سال سے کم ہیں اور ایک نیچرل کہا جاتا ہے کہ امیونٹی ان کی ہے کرونا کے اگینسٹ.
جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو باہر جانے دیں. لیکن باہر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلڈ گیٹ کھول دیں, اس کو طریقے کے ساتھ, جیسے سویڈن میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تو انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ یا باقی چیزوں کو وہ فالو نہیں کر رہے. جیسے وہاں پہ ریسٹورینٹ کیپیسٹی سویڈن کے اندر لیس دین 50% کی ہوئی انہوں نے, کہ نہیں کہ آپ ریسٹورینٹ میں جائیں لیکن وہاں پہ لوگ کم ہوں گے, باہر بھی اگر آپ جائیں تو ماسک پہنے. تو میرا بھی یہی مطلب نیریٹو ہے, بلکہ میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں پاکستان میں خاص طور پہ جو لوگ ہیں کہ بھائی آپ نے لاک ڈاؤن آپ کے لیے مجھے پتا ہے بہت مشکل ہے, خاص طور پہ غریب آدمی ہے اس کو
نہیں, لیکن اینٹی باڈیز یہ تو درست ہو گیا لاک ڈاؤن اور اس کے لیے آج انہوں نے اپروول دے بھی دی ہے کہ اس کو لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایز کیا جائے. لیکن اینٹی باڈیز ٹیسٹ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہیں, میں اس وقت ان کا نام بھول رہا ہوں, وہ بار بار گورنمنٹ کو وفاقی حکومت کو وہ یہ تجویز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں اینٹی باڈیز ٹیسٹ جو ہیں وہ کرنے دیے جائیں تاکہ ہم یہ ڈائگنوز کر لیں کہ کہاں پہ امیونٹی زیادہ ہے اور وہاں سے ہم وہ چیزیں باقی لوگوں میں منتقل کر سکیں.
دیکھیں اینٹی باڈی ٹیسٹ سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کتنی پرسنٹ پاپولیشن کو انفیکشن ہو چکا ہے اور ان کے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, یہ اس سے فائدہ ہوگا. وہ یہ ٹریٹمنٹ بہرحال نہیں ہوتا, اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اس سے بہرحال یہ کہ ایک ریفرنس پوائنٹ مل جائے گا کہ پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ اگر جیسے نیو یارک سٹی کے اندر انہوں نے کیا تھا 21% پیپل ہیو بین پازیٹو فار دا اینٹی باڈیز وچ از اے ویری گڈ نمبر. تو اب پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا نمبر ہوں گے یا کتنی پرسنٹیج جو لوگوں کی ہے وہ اینٹی باڈیز ڈیولپ آلریڈی ہو چکی ہیں, تو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ وہاں کا نمبر کیا آتا ہے اگر وہ اینٹی باڈی ٹیسٹنگ شروع کرتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ بھائی لاک ڈاؤن ٹھیک ہے اگر آپ نہیں فالو کر سکتے, آپ کو باہر نکلنا ہے کام کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ ماسک پہن لیں. آج کی میں نے ایک اور اسٹڈی پڑھی ہے آسٹریلیا کنٹری کے اندر 90% جو کرونا وائرس جو ہے وہاں پہ وہ انہوں نے کنٹین کر لیا ہے اس کو صرف اور صرف ماسک پہننے کی وجہ سے.
اچھا
جی دیکھیں مطلب ان کے 90% ریٹ جو ہے انہوں نے ڈراپ کیا ہے کرونا وائرس کی جو پھیلنے کا صرف ماسک پہننے سے. اور پھر دوسری انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں ہانگ کانگ ہے, تائیوان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, چائنا ہے, ایوری بڈی میں ویئر ماسک ان دوز کنٹریز. تو اگر آپ وہاں پہ یہ چار کنٹریز جو میں نے بتائے ہیں ہانگ کانگ ہو گیا, تائیوان ہو گیا, ساؤتھ کوریا, چائنا, ٹھیک ہے, ان کے انہوں نے اس وائرس کو کنٹین بالکل اپنے اسٹرکٹ میجرز سے ہی کیا ہے. وہاں پہ ہر شخص انکلوڈنگ بچہ جو چھوٹا سا ہے 4 سال کا 3 سال کا وہ بھی ماسک پہن کے باہر نکلتا ہے. مجھے جو افسوس ہوتا ہے پاکستان کا कि ना वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और ना ही कोई मास्क पहने निकलते हैं। पूरी पूरी जम्मे गफीर जो है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, बाजारों में लाइनें लगी हुई हैं समोसे पकौड़े की दुकानों पे, कोई वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही। दैट्स माय बिगेस्ट कंसर्न एंड दैट्स माय बिगेस्ट इशू कि अगर आप लॉकडाउन नहीं फॉलो कर सकते, विच आई अंडरस्टैंड कि आपको बाहर निकलना है, काम करना है, दिहाड़ी कमानी है, पैसे कमाने हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर, लेकिन इस चेहरे पे मास्क लगाने तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आप वो रुमाल बांध लें, आप कोई कपड़ा बांध लें मुंह पे।
एग्जैक्टली इसका मेडिकल एंगल डिस्कस कर लेता हूँ ईरान के रेफरेंस में। उसके 15 सूबों में बताया जा रहा है कि वायरस दोबारा शदीद किस्म की इंटेंसिटी के साथ वो वापस आ रहा है, ये ईरानी वजारत सेहत ने बताया है। सो ये आना जाना, वायरस की कैटेगरीज बदलना,
दोबारा तो वापस इसी सूरत में आएगा कि आपने उसको खत्म किया ही नहीं है सिरे से। तो वो जब एक चीज गई नहीं है तो वो दोबारा नहीं आया, वो इट मींस इट वाज देयर, लेकिन क्या है कि आपने उसको सही तरीके से ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, ना लॉकडाउन किए आपने, ना ही लोगों ने मास्क पहने। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले खबर मैंने बल्कि अपने फेसबुक के पेज के ऊपर भी शेयर की थी कि ईरान के जो मजहबी रूहानी रहनुमा है उन्होंने कहा था कि 15 मई से दोबारा जो है मस्जिदें खोल दी जाएंगी। तो ये चीजें जो है दिस इज वेरी डेंजरस कि आपने अभी वायरस को मुकम्मल तौर पर खत्म किया नहीं है, लेकिन आप दोबारा से उसको प्रोपगेट करने के रस्ते जो है वो दोबारा खोल रहे हो। तो दिस इज व्हाट द मेन रीजन, दिस कुड बी द मेन रीजन कि वहां पे दोबारा से ये फैलना शुरू हो गया, कि वहां पे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जो है ना वो इस चीज को सीरियस नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि ये वायरस जो है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इसकी मुख्तलिफ किस्में है, अभी तक इसकी 30 म्यूटेशन जो है वो नजर आई है साइंटिस्ट को। जैसे आपने अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने देखा होगा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर जो है रेट ऑफ नंबर ऑफ डेथ जो है जमीन आसमान का फर्क है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया में जो इसकी म्यूटेशन है वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कि न्यूयॉर्क के अंदर है। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सो दैट यही वजह है कि बार बार वो बता रहे हैं। अब आ जाइए डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में तवक्कुआत बहुत हैं, आप बार बार इस पे कहते हैं, लेकिन हमें बताइएगा कि कौन कौन से मारूफ अमराज हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई लेकिन अब तक नहीं बन सकी है।
लेकिन वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना दैट कुड टेक इयर्स। अब जैसे बहुत सारे लोग शुरू में बड़े कह रहे थे नहीं नहीं 2-4-6 महीने में वैक्सीन आ जाएगी। देखिए वैक्सीन उसके अंदर स्टेजेस होती हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक, अब उसके अंदर शुरू में क्या होता है कि एनिमल्स के सबसे पहले तो उसका एक जेनेटिक कोड होता है वायरस का, उसको डिकोड करना पड़ता है। वो चाइनीज साइंटिस्ट ने उसको डिकोड करके इंटरनेट के ऊपर सबको दे दिया। दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम एंड ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द चाइनीज साइंटिस्ट कि उसने उसको सबको सबके लिए ओपन कर दिया। अब उसके बाद उसकी जो ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर होते हैं। जब एनिमल्स पे अच्छा प्रॉब्लम क्या होती है वायरस के अंदर, वो अपनी शेप हर वक्त बदलते रहते हैं। जैसे कि फ्लू वैक्सीन हर साल अमेरिका के अंदर लोगों को लगाई जाती है, लेकिन वो जो पिछले साल का जो स्ट्रेन होता है वायरस का उसको फॉलो करके बनाई जाती है। इसीलिए फ्लू की जो वैक्सीन है वो 100% वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो तकरीबन 55-60% इफेक्टिव होती है। बाद लोग जो होते हैं वो फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं लेकिन फिर भी उनको फ्लू हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर COVID-19 या कोरोना वायरस की हमें सिर्फ 70% जो है इसकी एफिकेसी चाहिए, क्योंकि अगर जहां हमने 70 लोगों को के अंदर ये इम्यूनिटी डेवलप कर दी तो वायरस जो है वो मर जाएगा, वो आगे प्रोपेगेट नहीं कर सकेगा, आगे वो नहीं फैल सकेगा। क्योंकि वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होस्ट चाहिए होता है, होस्ट से मुराद उसको एक बंदा चाहिए होता है। लेकिन जब बराबर वाला अगर मुझे वायरस लगा कोरोना वायरस का लेकिन असद के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी है तो असद ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो यानी कि असद के बाद वो तीसरे आदमी के पास नहीं जाएगा। दिस इज हाउ वी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द वायरस।
ठीक, तो आपने वैसे जिक्र भी किया कि जैसे HIV है, हेपेटाइटिस है, RSV है और इसी तरह और कई एक इश्यूज हैं जिसके लिए बड़ा लंबा अरसा साइंटिस्ट और लैब्स मसरूफ रहे। लेकिन
HIV की वायरस HIV की वैक्सीन 30 इयर्स लगे थे, फ्लू की वैक्सीन को 20-30 साल उसमें भी लगे, हेपेटाइटिस सी की 25 साल लगे, RSV जो बच्चों के अंदर मतलब होता है फ्लू कह लें उसको 60 साल लगे थे। कॉमन कोल्ड की 99 सीरो टाइप्स हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि BCG उसको बनाने में 100 साल लगे। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री, कह रहे हैं कि किसी भी डिजीज की वैक्सीन जो है वो विद इन अ ईयर और वन एंड हाफ ईयर हम डेवलप करेंगे सारे साइंटिस्ट का।
लेकिन इवन हेपेटाइटिस सी तो नहीं आ सकी अभी तक, सी की नहीं बनी।
तैयारी कर रहे हैं ना वो, लगभग 25 साल हो गए उसको तैयार, मतलब उसको तैयार करने में।
सो यानी अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो ये इंसानी तारीख की तेज तरीन या कम तरीन वक्त में बनाई जाने वाली वैक्सीन होगी।
एब्सोल्युटली।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल चीमा, आप हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे क्रिकेट पे। आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट में के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा तो क्रिकेट का सेगमेंट कैसे? बिल्कुल, क्रिकेट के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इटसेल्फ जो है ये बहुत बड़ा बड़े नुकसान का सबब बन रहा है। लेकिन क्रिकेटर्स के यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, क्रिकेटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हैं, और इसके अलावा क्रिकेट के जो बड़े बड़े बाकी क्रिकेट से रिलेटेड इदारे हैं, जैसे क्रिक इन्फो हो गया, बाकी क्रिकेट की वेबसाइट्स हो गई, आजकल वहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड है चला हुआ है कि ऑल टाइम बेस्ट या किसी एक टीम का, ये कभी वर्ल्ड बेस्ट हो रहा है, कभी पाकिस्तान यानी ग्रीन शर्ट्स में बेस्ट हो रहा है, कभी बेस्ट प्लेयर, वो कुछ क्विज की टाइप में चीज़ें सामने आ रही हैं या चॉइसेस में। सो लोग बना रहे हैं, सो लोग उसके ऊपर ही मसरूफ़ हैं, ऑनलाइन क्रिकेट भी हो रही है, क्रिकेटर्स आपस में चिट चैट भी कर रहे हैं जो बहुत वायरल हो रही है। सो बात हम करते हैं कि जब क्रिकेट के मैदानों में कुछ नहीं हो रहा तो उन मैदानों को बराह रास्त आप तक पहुंचाने वाली जो पर्सनालिटीज़, हसन जलील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर, और शाह फैसल साहब, दोनों अमरीका में बेस्ड हैं, दोनों क्रिकेट लवर, दोनों क्रिकेट कमेंटेटर। सो उनसे पूछते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। एक चीज़ जो हो रही है आज वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, बताया ये गया है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको सिर्फ इस कोरोना की वजह से 380 मिलियन पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको मालूम है PSL जारी था जब कोरोना की वबा फूटी और PSL नामुकम्मल रह गया, उसके बाद IPL होना था, बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, IPL नहीं हो सका है। सो क्रिकेट बोर्ड्स को, क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है, अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछने हैं, और वो खुद क्या कर रहे हैं इन दिनों में ये भी जानते हैं। हसन जलील साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाह फैसल आपके भी हम मशहूर हैं। तो हसन जलील साहब आप बताइएगा कि क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा लेकिन क्रिकेट के जहनों में क्या हो रहा है?
देखिए बात यह है कि वो वक्त गुजारने के लिए आपको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। अब वो दिन जो पहले मिनटों में बकौल शख्स गुजर जाता था, सुबह होती थी और शाम होती थी, अब ये आलम है कि वो पुराना दौर वापस आ गया है कि काटे नहीं कटता।
बिल्कुल।
तो जाहिर है उसके लिए नई टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत सहारा दिया है, और जिस तरह आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि लोगों ने मसरूफियात के तरह तरह के तरीके ढूंढ लिए हैं। और आप देखिए एक ट्रेंड जो नया चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूट्यूब पे भरमार है चैनल्स की।
बिल्कुल।
मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा नोन फिगर हो जो अपना चैनल लेकर यूट्यूब पे न चला रहा, लोग उसको देखते हैं, और हर चैनल आप देख रहे होंगे कि वो थाउजेंड्स में उसकी क्लिक्स आ रही हैं।
ऑफ कोर्स।
इसके अलावा फिर जाहिर है कि जैसे आपने बताया कि क्रिकेटर्स ने अपनी मसरूफियात ढूंढ ली हैं और हम जैसे लोग हैं वो अपनी मसरूफियात में लग गए हैं,
तो फिर आपकी मसरूफियात में चैनल लॉन्च करना नहीं है या यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर अपने आपके एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके सामने आने का क्या प्लान है?
असल प्रोग्राम तो है, आपस की बात है, लेकिन बात यह है
मेरा ये बात आपस की नहीं रही, बहुत सारे लोगों ने सुन ली है।
मेरा हमेशा से एक वो रहा है कि काम आप वो करें जिसकी एप्रिसिएशन हो और जो थोड़ा सा डिफरेंट हो दूसरों से।
सही।
मैंने इसीलिए बड़ी, मुझे मतलब ये कि अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए कि बड़ी फरमाइशें आती हैं फेसबुक पर भी, वैसे मुझे ईमेल्स भी आती हैं और मुख्तलिफ जराए से लोग मुझे कहते हैं आप कुछ करें। मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन इंशाल्लाह एक तो क्रिकेट की मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा डिफरेंट होगा इन तमाम प्रोग्रामों से जो चल रहे हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी ऑथेंटिक और एक्सक्लूसिव।
सही।
उसके बाद मैं अपनी दो किताबों की तैयारी कर रहा हूँ। एक किताब मेरी क्रिकेट पर है जो बड़े अच्छे से पेंडिंग चली आ रही है, जी, उसका टाइटल है कॉमेंट्री बॉक्स। और एक किताब मेरी वो है जिसमें मेरे टोटल जो मेरी जिंदगी है उसका अहाता किया गया है, जिसमें मेरे तमाम प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स हैं, टेलीविजन, रेडियो, लोक शख्सियात और बहुत सी।
सही।
तो ये मौके से फायदा उठाकर मैं ये काम आजकल कर रहा हूँ।
अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया, चैनल लॉन्च और बुक्स की तैयारी। शाह फैसल, आप बताइए आपकी मसरूफियात कैसी जा रही हैं? आप तो IPL की कमेंट्री के लिए वहाँ पे मौजूद थे।
जी, PSL की PSL
माफी चाहता हूँ,
और अधूरे में छोड़कर आना पड़ा क्योंकि वो बगैर क्राउड के मैच होने लगे और फिर बिल्कुल कैंसिल ही हो गई। जो मेला सजा हुआ था, मतलब मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी बगाहे बगाहे आपसे बात भी होती रही थी कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, और हसन भाई जो हैं वो तारीख पर उनकी गहरी नजर है, कुछ लोगों ने ये तक कहा कि ये पाकिस्तान में खेलों की तारीख का जो क्राउड अटेंडेंस के हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट था, इसने सरपास किया वर्ल्ड कप 1987 और 1996 को, अ सिंगल स्पोर्टिंग इवेंट विद दैट मच पार्टिसिपेशन ऑफ क्राउड। एनीवे, खैर वो तो कोरोना की वजह से जाता रहा। बाकी हमारी भी मसरूफियात आजकल यही है कि सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि चैनल्स हैं, कंटेंट की भरमार है,
और आपको मजेदार चीजें लग रही हैं। ये बताएं कि इवन क्रिकेटर्स जो हैं वो बना रहे हैं कि बेस्ट 11, वर्ल्ड 11, हिस्टोरिक 11, और इवन अपने अपने मुल्कों की बेस्ट 11। सो ये ऐसी चीजें लगी
इत्तेफाक से आज सुबह ही मैंने एक देखी, हमारे पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर, दुनिया के मशहूर स्टैटिस्टिशियन हैं मजहर अरशद, जो दुनिया की तमाम टॉप ब्रॉडकास्ट कंपनियों के साथ काम करते हैं। आज मैंने उनकी एक ट्वीट देखी, तो उन्होंने ऑल टाइम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो भी उनकी नॉलेज में थी, एक पंजाबी 11 भी बना दी।
अच्छा,
तो मैंने शायद मेरे ध्यान में था कि ये सब 11 अब बन चुकी हैं, शायद कोई रहती हो, लेकिन मजर बीइंग मजर उन्होंने वो भी 11 बना दी और इसको किसी ने फॉलो किया। फिर
तो शाह फैसल, ये बताएं कि फाइनेंशियली क्रिकेट जो है ऑफकोर्स उसके अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अभी तो हमें सिर्फ ये ECB का पता चला है ना कि 380 मिलियन पाउंड का लॉस हो गया है। सो क्रिकेट को, ICC को रेवेन्यू के एतबार से क्या कुछ लॉस हुआ है?
जी, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और होगा अगर जितने देर क्रिकेट नहीं होगी। जो ECB की फिगर आपने कोट की, अगर ये पूरा सीजन वाइप आउट होता है तो 380 मिलियन पाउंड का है, और IPL के इससे भी ज्यादा स्ट्रगलिंग, क्योंकि IPL आपको पता है चंद हफ्तों का इवेंट होता है, लेकिन तकरीबन $500 मिलियन के लगभग उसका नुकसान है अगर वो IPL नहीं होती, जिसमें स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा, BCCI को होगा, और अल्टीमेटली वही नुकसान जो है वो ICC को होगा, क्योंकि BCCI और ये जो बोर्ड्स हैं यही ICC को फंड करते हैं, जैसे ECB होगी, BCCI होगी। तो अगर ये IPL जैसा इवेंट है वो अगर नहीं होगा तो ऑलमोस्ट $500 मिलियन का नुकसान है, और इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी पे भी IPL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ करता है, वो भी जो है वो नुकसान होगा। तो उसका नुकसान नीचे तक महसूस किया जाएगा, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि अगर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी मेरी वाबस्ती रही है तो मुझे ये पता है कि जो काउंटीज को फंडिंग होती है और काउंटीज के नीचे ईच एंड एवरी जो क्लब है, जो इनका बेसिक जहां से स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसको फंडिंग होती है ECB से हर साल। तो अगर ये लॉस ECB को होगा तो ये नीचे तक जाएगा वो क्लब्स में। क्लब्स की आपको मैं मिसाल दूं कि छोटी छोटी मेंटेनेंस होती है, जिस तरह साइड स्क्रीन की रिपेयर हो गई या स्कोरबोर्ड की रिपेयर हो गई या और बाउंड्री फेंस की रिपेयर्स हो गई, तो यानी इसका नुकसान टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक जाएगा और कोई भी उसको महसूस किए बगैर रह नहीं सकेगा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में।
हसन जलील साहब, आपके ख्याल में ये जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं ICC के या क्रिकेट बोर्ड्स के, ये क्रिकेट को कैसे मुतासर करेंगे?
बहुत ज्यादा करेंगे। जिस तरह देखिए जी, आम तासुर ये है कि जो मुल्क दुनिया भर की जो मुआशी सूरत हाल है वो आइंदा आने वाले बरसों में इसके झटके महसूस करेगी। इसी तरह क्रिकेट जो है वो इट विल नॉट बी द सेम, जो अब कोरोना के बाद में कहा जाता है ना कि लाइफ आफ्टर कोरोना, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। वो इसलिए है कि देखिए इकोनॉमी जो है वो रिकवर करते हुए टाइम लगाएगी, आपका स्पॉन्सरशिप आपकी इफेक्ट होगी, ठीक है जी, आपके जो पैट्रनेज है वो इफेक्टिव होगी, और जिस तरह फैसल ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड जो है उनके माली वसाइल वैसे नहीं होंगे, जैसे अब तक होते आए हैं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान है। और चूंकि ये एक ऐसा मतलब ये सिलसिला चला है कि जिसने पहली मर्तबा दुनिया की हिस्ट्री में पूरी दुनिया को जामिल कर लिया है। आप देखिए 204 मुल्क जो है वहां पर आप ना कोई आप एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना कम्युनिकेशन कोई ऐसी है बिजनेस की, हर चीज जो है एक स्टैंड स्टिल हो गई है। तो इसके इफेक्ट्स बाद में जो है वो ज्यादा शदीद होंगे।
इवन क्रिकेटर्स के स्किल्स के ऊपर भी असर अंदाज होंगे। जाहिर है अगर कोई क्रिकेटर गेम से ही दूर है, और गेम से दूरी की वजह तो बताई जा रही है कि चूंकि बॉल है और बॉल सारे प्लेयर टच करते हैं, वैसे तो ग्राउंड्स को खाली रख के भी क्रिकेट हो सकती है, सो जो क्रिकेटर्स खेल ही नहीं रहे सो उनको भी फर्क पड़ेगा।
देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इफेक्ट होने का इम्कान है वो साइकोलॉजिकली जो है ना नफ्सियाती तौर पे असरात, जैसे आप देखिए कि मुख्तलिफ तबकों के एनालिसिस आने लगी है कि उससे लोग मुतासर होना शुरू हो गए हैं। ये जो अब जाहिर है कि आपको एक तरीके से आप बिल्कुल लॉक्ड हैं, तो उसके नफ्सियाती असरात जाहिर है आपके रूनुमा हो रहे हैं। फिर वो खिलाड़ी जो जाहिर है कि जो एक्सपोजर हर वक्त चाहते थे और जिनका प्लेजर ही यह है कि वो एक्सपोजर जो है इसको एंजॉय करें, अब वो कैद होकर रह गए हैं। और जाहिर है जब वो आजाद होंगे उसके बाद भी कुछ अरसे तक क्रिकेट की सरगर्मियां उस अंदाज से बहाल नहीं हो पाएंगी जैसी पहले होती थी।
क्या नेट भी नहीं हो सकता, यानी एक बॉलर को अगर 6 गेंदे डेजिग्नेट कर दें कि वो वही यूज करेगा तो नेट लगा हुआ है, एक बॉलर है वो 6 बॉल एक बैट्समैन को करा रहा है, फिर वो बॉल में उठा के दूसरे बैट्समैन को कराने लग जाता है, इसी तरह बॉलर वो चेंज होते रहते हैं शिफ्ट होते रहते हैं, सो नेट प्रैक्टिस तो हो सकती है, क्या ख्याल है?
ये आइडिया तो है, जिस तरह अभी हसन भाई बात कर रहे थे, जब घरों में मुकैद हैं तो ये चीजें जरूर जहन में आती हैं कि ये भी किया जा सकता है, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि बात पहले भी हुई कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ये सिनेरियो होने का, इसलिए किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं और कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नफ्सियाती हद आ रही है, जब हर बंदा जो है वो घर में बैठे हुए अब बहुत ज्यादा उकताने लग गए हैं सब लोग, और उसके बाद फिर ऐसी जैसे आपने सजेशन की, यकीनन लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो स्टेज थी आपने देखा होगा कि प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग की वीडियोस अपलोड की, कोई अपने ड्राइंग रूम में जो है वो वेट उठा के कर रहा है, कोई अपने छोटे से लॉन में, कोई पोर्च में, कुछ ना कुछ। तो अब जाहिर है वो भी हो गया सब कुछ। अब नेक्स्ट यही है कि हर कोई चाहेगा कि किसी तरह ये जो फिजिकल बैटिंग और बॉलिंग करे, और नेट्स के लिए वो सोचेंगे। तो जैसा हसन भाई ने कहा कि लाइफ विल नेवर बी द सेम इन एवरी एस्पेक्ट, सो क्रिकेट इज नो डिफरेंट। तो यकीनन इस बारे में सोचा जा रहा होगा, और खासतौर पे मैं इंग्लैंड की बात इसलिए करता हूँ कि उनका सीजन था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सीजन ऑलमोस्ट ओवर था, 2-3 गेम्स का नुकसान हुआ, बाकी तो सितंबर तक कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटी जो है वो प्लान नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वहां के क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त मैं अक्सर देखता हूँ, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन, जो रूट वगैरह, वो लोग बहुत ही एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, क्योंकि उनका सीजन उरूज पे है और कोई क्रिकेट की कोई जो है वो अभी तक
एक्टिविटी नहीं है।
होपफुल है
एग्जैक्टली,
लेकिन लेटर ऑन इन द समर में भी वो कुछ क्रिकेट करवा सके, लेकिन अभी तक तो जो है वो प्लेयर्स काफी मुकैद से हो गए हैं, और यकीनन वो चाहेंगे कि इस तरह जो आपने आइडिया फ्लोट किया, किस तरह का कोई आइडिया आया ताकि वो बाहर निकले मैदानों में और जो चीज जो उनका प्रोफेशन है वो उस पे काम करें।
असन जलील सर, एसोसिएशन जी
सॉरी असन, मेरे जहन में एक चीज ये है कि जो मैं समझता हूँ कि और कुछ हो ना हो, एक फॉर्मेट क्रिकेट का इससे बहुत मुतासर होगा, वो है टेस्ट क्रिकेट।
अच्छा ये बताएं असन भाई, अगर हम पीसीबी की बात करें, वैसे तो मैंने शुरू में हवाला क्रिकेट इन्फो का भी दिया, सब अपनी यादों पे चल रहे हैं कि आज के दिन कौन सा बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान ने 25 मार्च को या फलां को वर्ल्ड कप जीता, फिर उस दिन हिस्ट्री, वो सारी वो स्टोरीज बन रही हैं। आपके जहन में भी ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी यादें होंगी जो आप उनका हवाला अपने चैनल्स में देंगे जैसे आप ये कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी पॉपुलर हुई ना वो पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान की तारीख के यानी टॉप बैट्समैन, और बताया कि इनमें से पेयर बताएं कि जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मर रहे हों, और इसी तरह बॉलर बॉलिंग के अंदर की बेहतरीन जोड़ी, मेजॉरिटी का ख्याल वसीम वकार पे था कि एज पेयर उनसे बेहतर कोई नहीं आया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपके ख्याल में बॉलिंग का पेयर कौन सा बेहतर रहा और बैटिंग में कौन सा पेयर बेहतर रहा? मैं पूरी टीम इसलिए नहीं पूछ रहा कि थोड़ा सा उसमें आपको थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन पेयर
हाँ, देखिए जहां तक बॉलिंग है उसमें तो विदाउट एनी डाउट, आप अगर पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री उठा के देख लें तो वसीम और वकार से ज्यादा बेहतर प्लेयर आपको नहीं मिला।
सही।
पैचेस में आए प्लेयर लेकिन कंसिस्टेंटली इतने ज्यादा मैचेस एक साथ खेलने वाला प्लेयर जो है वो आपको नहीं मिलेगा।
बिल्कुल।
अच्छा बैटिंग में आपके कई अच्छे प्लेयर आए लेकिन उनमें मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ और मुझसे अगर कहा जाए तो मैं यूनुस का नाम लूंगा और उसके बाद दूसरा प्लेयर जो बनता है वो आपका मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम है।
बिल्कुल।
यहाँ भी वही वाली बात है कि स्टेटिस्टिकली ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा मैचेस खेलने वाले खास मैचेस खेलने वाले प्लेयर।
मैंने ऐसे पहले कि मैं फैसल से भी पूछूं मैंने भी बिल्कुल बॉलिंग में अनडाउटफुली अनकंटेस्टेंटली मैं कहूंगा कि वो वकार और वसीम का पेयर था और बैटिंग में मेरे नज़दीक इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ जिसमें क्लास भी था। अगर अगरचे यूनुस बहुत बड़े परफॉर्मर हैं कोई शुबा नहीं है। फैसल आपके ख्याल में?
जी असद भाई इसमें जो कॉन्सेप्ट अक्सर जगह पे बेस्ट इलेवन का ये बनाया गया ये जो पेयर्स थे कि आप चूज करें कि पाकिस्तान की जरूरी नहीं कि वो एक ही दौर में खेले हों मुख्तलिफ अदवार में से आप किन दो को एज अ पेयर खेलता हुआ देखना चाहेंगे एक ये एस्पेक्ट भी इसमें आया। तो मेरा तो हमेशा से जो फैसिनेशन रही है वो हमेशा जावेद मियांदाद और ज़हीर अब्बास की रही है कि इनका जो बैटिंग पेयर था वो दोनों मुख्तलिफ स्टाइल के बैट्समैन थे और दोनों जब खेलते थे तो बॉलरों का जीना हराम किया कर देते थे। जावेद मियांदाद की आपको पता है कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ज़हीर का स्ट्रोक प्ले फिर दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट मास्टर थे और जावेद मियांदाद चैलेंज लेके खेलते थे ज़हीर उनकी बनिस्बत जो है क्वाइटली अपने स्टाइल और एलिगेंस ग्रेस के साथ अपने रन बनाया करते थे। तो मेरा तो बैटिंग में पेयर बेस्ट यही है और अगर ख्याली घोड़े दौड़ाए जाए तो बॉलिंग में मेरे ख्याल में वसीम अकरम और मोहम्मद आसिफ का नए बॉल से जो पेयर अगर होता वो क्या ही पेयर होता जो दोनों नए बॉल से जो आर्टिस्ट हैं बॉलिंग के और दे कैन मेक द बॉल टॉक यू नो इन लिटरली इतना उनके पास फन था और जो कंट्रोल था अगर दोनों इकट्ठे ऐसे पेयर होते तो कोई भी क्या नजारा दिखनी होता। और अगर बात करें कि किसी उस हद तक जाए अगर कि अगर उनके बाद फॉलो अप में आपके पास वकार और शुएब अख्तर आ जाए तो फिर वो क्या
ही। बहुत शुक्रिया शाह फैसल आप हमारे साथ हैं। हसन जलील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।
बहुत शुक्रिया जी ऑलवेज अ प्लेजर
थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरों खुसूसी फीचर्स टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है मैं हूँ असद हसन और हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट वबा में कला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर हम अपने शुरा को उन शुरा को मदू करते हैं जिन्होंने बिलखसूस कोरोना की वबा के दिनों में हालात से मुतासर होकर इसे अपनी शायरी के इजहार में बयान किया है और तख्लीक की है। सो आज हमारे साथ न्यूयॉर्क से हमारे दोस्त अवैस राजा साहब मौजूद हैं बहुत शानदार लिखते हैं उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में। सो अवैस राजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा पहले तो जनरली कोरोना वायरस ने कैसे आपकी ज़िंदगी को मुतासर किया है और ख़ासतौर पर जब आप न्यूयॉर्क में हैं तो आप तो सबसे ज़्यादा ऐसे शहर में बैठे हैं जहाँ पर लोग मुतासर हुए हैं जहाँ पर हम बात हुई हैं तो आपका मुशाहिदा और आपका तो वो ज्यादा गहरा और तकलीफ दे होगा।
जी अस्सलाम वालेकुम असद भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। तो एक तो भाई ये जो न्यूयॉर्क आपको पता है यहाँ की जो गहमा गहमी है तो इस जिंदगी में जब आप बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल हू का आलम है और वो शहर के जिसके बारे में मशहूर है कि ये सोता ही नहीं है तो एक अजीब सा माहौल है कभी कभी खौफ वहशत तारी हो जाती है आपके ऊपर लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी है चल रही है और एहतियात के साथ हमने इसको आगे बढ़ाना है। तो हम भी आपकी तरह जैसे पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है हम भी वैसे ही हैं तो हमारी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे मुल्कों से कह लें शहरों से कह लें स्टेट से कह लें कि यहाँ जो इसके फैलाव है वो बहुत तेज है
कोई शक नहीं है
और उसकी वजह से हमारी پاکستانی کمیونٹی بھی اور باقی ساری کمیونٹیز بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, اور ہمارے اردو ادب کے ساتھ ریلیٹڈ بھی جن کا بہت زیادہ دکھ ہوا.
آپ ان کا نام لے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں اویس انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایک بچے سے, بچوں کو سمجھانا بالخصوص ضروری ہے, یعنی نوجوانوں کو کہ وہ کانسپریسی تھیوریز پہ یقین نہ کریں. ابھی بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں, یہ جینون ہے یا نہیں. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ اہل ادب کمیونٹی میں سے اور باقی بزنس کمیونٹی میں سے, آپ کے جان پہچان والے لوگوں میں سے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے یا اس کے شکار ہوئے ہیں؟
یہ سب بھائی یہاں تو بہت زیادہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے, ہمارے بہت قریبی دوست ہیں اشرف میاں صاحب جو اردو ادب الکار باب ذوق کے بانیوں میں نیو یارک میں شمار کیا جاتا ہے, ان کا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں, اور بہت قریبی دوست ہمارے جو اردو ادب کے ساتھ بھی ریلیٹڈ تھے, ہمارے بہت قریبی دوستوں میں بھی تھے, تو وہ ہمیں دعوے مفارکت دے گئے ہیں. تو یہ بات یہی ہے کہ اب ہم لوگ سوچتے تو رہتے ہیں, اب وہی جو اس کا شکار ہوا ہے, ہمارے میرے بہت پیارے دوست ہیں اعجاز حسین بٹی صاحب, اردو اور پنجابی کے شاعر ہیں بہت اچھے, وہ تو اس میں مبتلا بھی ہو گئے تھے لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ اب اس سے.
اچھا بھٹی صاحب کو کرونا ہو گیا تھا, چلو ہماری بھی بہت ساری دعائیں ان کے لیے, بہت شاندار شاعر ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں وہ بھی. اویس راجہ صاحب, آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پہ جو کرونا سے متاثرہ آپ کا کلام ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین تک پہنچائیں, یعنی اس سے انسپریشن لے کے. آپ تو خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کتنا خوبصورت شہر, اتنا کہنا چاہیے کہ منی ورلڈ ہے, پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ ہیں, خوبصورتی ہے, روشنیاں ہیں, رومانس ہے, کیا ایسا کچھ ہے جو وہاں پہ نہیں ہے, لیکن سب سٹینڈ سٹل, جیسے وقت تھم گیا ہو. سو یہ سب کچھ آپ کی شاعری میں کیسے ریفلیکٹ ہوا ہے؟
جی میں شروع دنوں میں جب یہ, کیونکہ اب تو ایک ہوتا ہے نا بندے کو عادت سی ہو جاتی ہے, اب تو ہم اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں, لیکن جب شروع میں وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا اور شہر کی جو ویرانی تھی جب وہ دیکھی تو وہ بہت کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی, تو اس دوران میں نے ابتدائی دنوں میں ہی ایک غزل لکھی تھی, تو وہ میں پیش کیے دیتا ہوں. اور یہ غزل میں نے مقصد بھائی ہیں, مقصد ندیم صاحب ہمارے یہاں اردو ادب کے بہت بڑا نام ہے, تو ان کے نام میں نے کی تھی, تو ان کا نام بھی اس غزل میں آتا ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی وضاحت ضروری
ہے.
بلا بن کر کرونا آدمی کو, بلا بن کر کرونا آدمی کو, بنا لے گا کھلونا آدمی.
واہ.
یہاں اب خود کو چھونے کے لیے بھی پڑیں گے ہاتھ دھونا آدمی.
واہ واہ بہت اعلیٰ.
سفر میں آج تک رکھے ہوئے ہے تیرا ہونا نہ ہونا آدمی.
کیا کہنے, تیرا ہونا نہ ہونا آدمی کو. واہ.
بڑے حد سے کبھی گر خواب غفلت جگا دیتا ہے سونا آدمی.
واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں آپ کے.
پڑے گا لازمن اس بار مقصد, پڑے گا لازمن اس بار مقصد, ہنسی کے ساتھ رونا آدمی کو.
واہ.
خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, حسد کرتا ہے بونا آدمی کو.
واہ 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 کیا کہنے, کیا کہنے آپ کے ویس راجہ.
خوشامد سے فقط گرتا ہے لیکن, حسد کرتا ہے بونا آدمی کو, کئی حجروں کی یہ خواہش ہے راجا, کئی حجروں کی یہ خواہش ہے راجا, بنا دیں چار کونا آدمی.
واہ 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 کیا کہنے ہیں ویس راجہ.
بلا بن کر کرونا آدمی کو, بنا لے گا کھلونا آدمی کو.
بہت اعلیٰ, بہت زبردست, بہت خوبصورت غزل آپ کی. اویس راجہ ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے, انہوں نے نیو یارک کا باقی احوال بھی بتایا, انہوں نے ان روشنیوں کو کہنا چاہیے کہ ویران ہوتے ہوئے دیکھا ہے, زندگیوں کو ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے, وقت کو تھمتے ہوئے دیکھا ہے, پیاروں کو انفارچونیٹلی جاتے ہوئے دیکھا ہے. سو ان کی شاعری میں اور ان کی گفتگو میں اس کا عکس آپ کو ملتا ہے. بہت شکریہ اویس.
بہت شکریہ.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.